नमस्कार दर्शकों, अपने चैनल के माध्यम से मैं आपका दोस्त अमित एक बार फिर से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं आपका, जिसका नाम है मार्गदर्शन। मुझे एक गीत की पंक्तियां याद आती हैं, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, पर आज जीवन के इस दौर में देखा जाए तो ये हंसना और गाना यानी कि खुशी का रहना मात्र पल दो पल का ही रह गया है। क्यों? जो जो जीवन आगे बढ़ता है, जो जो जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर आती हैं, त्यों तो जिंदगी से खुशी गायब होती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? जीवन की राह जिस पे हर कोई सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहता है, शांति से सुकून से अपना जीवन जीना चाहता है, फिर ऐसा क्या हो जाता है? क्यों हम अपने आप से दूर हो जाते हैं? क्यों सफलता हमसे दूर होती चली जाती है? क्यों शांति हमसे दूर होती चली जाती है? और उलझने? उलझने तो बढ़ती ही चली जाती हैं, और जब उलझने होती हैं तब इंसान को, मानव को आवश्यकता पड़ती है मार्गदर्शन की, किसी अनुभवी व्यक्ति की, किसी विशेष आत्मा की। आज हमारे इस कार्यक्रम मार्गदर्शन में इसी तरह का मार्गदर्शन पाने के लिए मुरैना से कुछ व्यवसायी गण आए हैं, और व्यवसायी गणों के मन में उठने वाली हर समस्या के समाधान के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम मार्गदर्शन में हम स्वागत करते हैं वरिष्ठ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अवधेश दीदी का। दीदी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। वरिष्ठ राजयोगिनी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी अवधेश दीदी, जो कि पिछले 48 वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक समर्पित जीवन जी रही हैं, हर श्वास दीदी का संकल्प यही रहा कि किस तरह से मानव जाति का कल्याण किया जाए। वर्तमान में अवधेश दीदी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की जोनल डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं, सेवाएं दे रही हैं, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में भी सेवाएं दे रही हैं। ज्ञानवीणा मासिक पत्रिका, जो कि भोपाल से प्रसारित होती है, उसकी मुख्य संपादिका हैं। इतने सारे पदों को संभालते हुए दीदी ने कई आत्माओं का कल्याण किया है। पिछले 48 वर्षों से एक तपस्वी जीवन, एक समर्पित जीवन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हर श्वास इनका संकल्प यह रहा कि किस तरह से मानव जाति का कल्याण हो। आदरणीय दीदी देश विदेश और कई सेमिनार्स में मुख्य प्रवक्ता के रूप में भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। आइए आज के दिन मार्गदर्शन इस कार्यक्रम में हम दीदी के अनुभवी जीवन का, तपस्वी जीवन का लाभ उठाएं। दीदी, आज सौभाग्य की बात है कि आप हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में हैं, और आज मुरैना से आए व्यवसायी गण अपनी कुछ समस्याएं लेकर के हमारे पास में आए हैं, जो कि अपनी उलझने सुलझाना चाहते हैं, कुछ मार्गदर्शन चाहते हैं आपसे। प्रश्नोत्तर की इस कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती कृष्णा गुप्ता जी से, जो कि अपना सवाल अवधेश दीदी से पूछें।
नमस्ते दीदी, मेरे दो बेटे हैं, एक बेटा मेरी बात मानता है, एक नहीं मानता है, इसी वजह से हम बहुत टेंशन में रहते हैं। मेरे पति भी टेंशन में रहते हैं और मैं भी टेंशन में रहती हूँ, कैसे दोनों को एक जैसा बनाना है।
ओम शांति। आप सभी वर्तमान के इस युग को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि मानव के जीवन में सब कुछ है, लेकिन स्वभाव संस्कार अलग अलग होने के कारण निश्चित ही आपस में तकरार भी होती है। लेकिन जब हम इस बात को एक पॉजिटिव वे में लेके चलें कि एक बेटा मेरी बात मानता है और दूसरी नहीं मानता है, इससे अगर हम टेंशन में आएंगे तो मेरी स्थिति भी खराब होगी और वातावरण भी खराब होगा। इसको हम अपने जीवन के अंदर सकारात्मक तरीके से इसको यूज करें कि जो बेटा मेरी बात नहीं मानता है उसके लिए मुझे अपने मन के अंदर में कोई ऐसी कटु भावना, ऐसी गिला नहीं रखनी है जिससे उसको ऐसा एहसास हो कि मेरी माँ मेरे से नाराज है, बल्कि और ही उसको पॉजिटिव वे में प्यार से, स्नेह से समझाते हुए, जैसे हम भोजन कराते हैं उस भोजन के अंदर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करें, जिससे बच्चे के मन में भी प्यार की भावना हो और संस्कारों का परिवर्तन हो। मैं आपको बहुत अच्छी एक अनुभव की बात बताती हूँ कि जैसे हमारे संकल्प होंगे वैसे संकल्प ही हमारे परिवार के होंगे। वैसे भी माता को कहा जाता है, माता ओ माता तू है सबकी भागी विधाता। अगर मुझे अपने बच्चों को अच्छा बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, तो कहा जाता है कि नारी नर से दो मात्रा में भारी, क्योंकि तेरे सर पर है बहुत बड़ी जिम्मेवारी। तो हम अपने पॉजिटिव संकल्प, व्यवहार, सुंदर वातावरण, अच्छी हम भावना से बच्चों की पालना करेंगे तो जैसे हम अच्छा भोजन खिलाते हैं वैसा अच्छा वातावरण भी दें। और अच्छा वातावरण देने के लिए उनको आध्यात्मिक अच्छी बातें भी सुनाएं, इसको उनके मन में परिवर्तन भी आए और जीवन जीने की कला को समझ सके। तो जहां तक मेरा अपना अनुभव है कि संसार में सब वैरायटी स्वभाव है, वैरायटी संस्कार है, ये वैरायटी ड्रामा है। ड्रामा को हमें एंजॉय के रूप में देखना है, टेंशन के रूप में नहीं। हमें उससे शिक्षा ग्रहण करनी है, अपने आप को परिवर्तन करना है, क्योंकि हम दूसरों को परिवर्तन की बात सुनाते हैं लेकिन परिवर्तन स्वयं का करना है। और स्वयं का कैसे, कि मुझे किसी बात को लेकर के टेंशन नहीं करना है, मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिससे अगले व्यक्ति को एहसास हो कि मेरी माँ मेरे से नाराज है, बल्कि उसके राज को जानकर के प्यार से, स्नेह से, व्यवहार से उसको संतुष्ट करना है। जब ऐसी रूपरेखा आप एक सप्ताह एक मास करेंगे, आपके बच्चे के अंदर परिवर्तन आएगा। एक पॉजिटिव व्यवहार से हमारा सोच हमारे संस्कारों को परिवर्तित करता है और हमारे वातावरण को सुंदर बनाता है। इसलिए पॉजिटिव वातावरण से, पॉजिटिव वाइब्रेशन से अपने बच्चों की पालना कीजिए। आप देखेंगे कि आप निश्चिंत रहेंगे, आप खुश रहेंगे, तो बच्चों का जीवन आपको देख करके परिवर्तित हो जाएगा कि मेरी माँ कितनी अच्छी है कि मेरे इस नेचर से डिस्टर्ब नहीं होती है। आप प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखिए।
क्या बात है, कितनी सहजता से और कितने शांतिपूर्वक आदरणीय अवधेश दीदी ने श्रीमती कृष्णा जी के प्रश्न का समाधान किया। प्रश्नोत्तर की इस अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा मोहन वर्मा जी से, जो कि मुरैना के व्यवसायी हैं। अपना प्रश्न दीदी से पूछिए।
नमस्ते दीदी, मेरी एक डॉक्टर बेटी 27 साल की है, शादी करना नहीं चाहती, समाज में उपास के पात्र बन गए, क्या करें, समस्या का हल क्या है?
जहां तक आपका प्रश्न है, मेरा विचार है कि अगर बच्ची का संकल्प शादी करने का नहीं है और आप जबरदस्ती शादी कराना भी चाहेंगे, तो अगर उसके शादी का जीवन सुखमय नहीं व्यतीत होता है क्योंकि उसकी भावना नहीं है, तो आपको भी टेंशन होगा और उसको भी टेंशन होगा। मेरी ऐसी इस समय के दौरान मन की भावना है कि बच्चों का जीवन बहुत स्वतंत्र हो गया है। अगर आप देखते हैं कि बच्चे के संस्कार बहुत अच्छे हैं, वो अपने इस जीवन को अच्छे जी सकती है और वो डॉक्टर है, अगर उसके सेवा करने का लक्ष्य है और स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है, तो उसके ऊपर कोई प्रतिबंध मत लगाइए। हाँ, उसको ये जरूर कहिए कि जब तक तुम्हारा संकल्प है भले आप शादी नहीं करो, लेकिन जब आपके मन में आए तो ये भावना हमें जरूर बताना, हम शादी सहज रूप से करेंगे। क्योंकि आज के समय पर कोई भी बच्ची को, कोई भी कन्या को, बच्चे को अगर माता पिता जबरदस्ती शादी करा भी देते हैं तो उनका लाइफ सक्सेसफुल नहीं रहती है। तो मैं यही चाहूंगी कि बच्ची को आप ये पाठ पढ़ाएं कि बच्ची इस कलयुगी दुनिया में स्वतंत्र जीवन जीना साधारण बात नहीं है। तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास है, इतना मर्यादाओं का पालन कर सकती हो, अपने जीवन का सुंदर रिकॉर्ड बना सकती हो, माता पिता का नाम रोशन कर सकती हो, अपने आप को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकती हो, तो हम आपका साथ जरूर देंगे। परंतु कहीं गलत राह पर चलकर स्वयं का परिवार का नाम बदनाम करने का कोई कदम नहीं उठाना, ये शिक्षा आप देंगे। और बच्ची का अगर जीवन के अंदर में दृढ़ संकल्प है तो मैं चाहूंगी कि जब तक बच्ची का संकल्प है आप सहयोग प्रदान करते रहें।
प्रश्नोत्तर की इस अगली कड़ी में मैं आवाज दूंगा मांगीलाल बंसल जी, जो कि मुरैना के ही व्यवसायी हैं। अपने मन में एक समस्या लेकर के वो भी हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं।
असामाजिक तत्व मेरी लाइट को काट देते हैं, जिसके कारण मैं परेशान हूं। अंधेरे में आज मैंने दिवाली बनाई थी, अब मुझे क्या करना है?
आजकल की ऐसी कलयुगी दुनिया है, किसी न किसी कारण से एक दूसरे को डिस्टर्ब करना और स्वयं डिस्टर्ब होना, उनको इसीलिए सुख मिलता है। लेकिन किसी के गलत व्यवहार से हमको डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि अगर हमें कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कोई हमारे कार्य में रोड़ा डाल रहा है, निश्चित रूप से अपने मन को यह समझाना है कि मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी कड़ी परीक्षा है। क्योंकि आज के युग में व्यक्ति के पास साधन है, सुविधाएं हैं, पद है, पोजीशन है, लेकिन खुशी नहीं है, शांति नहीं है, कोई न कोई प्रकार का टेंशन है। आपको एक काम करना चाहिए कि जो लाइट काट रहा है उसको आप हर प्रकार से निमंत्रण दें, मित्रता का भाव प्रकट करें और उससे पूछें कि भैया आपको इसमें क्या आनंद आ रहा है? मेरी लाइट काटोगे तो आपकी भी जीवन की हमेशा की लाइट कटेगी ना, क्योंकि आप दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी शक्तियों का, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। तो पॉजिटिव संकल्प देकर और एक अच्छी दोस्ती की भावना को लेकर, एक ईश्वरी उपहार लेकर, एक संबंधों का सुंदर सौगात लेकर आप उससे बातचीत करेंगे तो हल निश्चित मिलेगा और आपकी दोस्ती सदा के लिए बनी रहेगी और लड़ाई झगड़ा खत्म होगा और अंधकार से प्रकाश की ओर वो भी जाएंगे और आपको भी प्रकाश मिलेगा।
प्रश्नोत्तर की इस अगली कड़ी में मैं आवाज दूंगा श्रीमती पप्पी शर्मा जी को।
मैं कहना चाह रही हूँ 10 साल पहले रुपए पड़े हैं, सब जगह बांट दिए, जो लोग देते नहीं है, मेरे मिस्टर मांगने जाते हैं पति तो लौट के आ जाते हैं वापस, कोई भी पैसे देने की इच्छा नहीं करता है, तो आकर के वापस आ जाते हैं, तारीख रख देते हैं, 1 को देंगे 5 को देंगे 10 को, कोई भी नहीं देता है। तो लौट के आए थे, घर में टेंशन होता है, मेरे को गुस्सा आ जाती है बहुत भी, तुम घर में हमारी में बहुत टेंशन होता है, इसका क्या समाधान है दीदी आप बताइए?
कि आज के इस कलयुगी कलह कलेश की दुनिया में ईमानदारी का सौदा इतना ज्यादा नहीं रहा है, कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में बेईमानी का भूत सवार हुआ है। तो मेरा ऐसा अपना संकल्प है कि अगर कोई हमें पैसा नहीं दे रहा है तो निश्चित ही पहली बात है कि हमें पार्टनरशिप में इस प्रकार का कोई कार्य करने का भी भाव नहीं रखना चाहिए, और यदि हम ऐसा कार्य करते भी हैं और किसी प्रकार से हमारी जो आमदनी है वो सिस्टमैटिक रूप से नहीं हो पा रही है, तो जो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है थोड़ा हम उससे बात करें कि आपने जो बात की है, आपने जो संकल्प लिया है, आपने जो सहयोग की बात हमारे साथ में रखी है, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर भी एक आपको बहुत गहरी बात बताते हैं जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, कि बात करने की बजाय अगर उस आत्मा को सामने रखकर अपने मन के पॉजिटिव संकल्प आप करेंगे कि मेरा ईमानदारी का पैसा मेरे पास आ रहा है और आ जाएगा, एक सत्ता के अंदर आ जाएगा, एक मास के अंदर आ जाएगा, एक प्रैक्टिकल आप विधि अपना के देखिए।
प्रश्नोत्तर की कड़ी में मैं आवाज दूंगा श्री ब्रजराज सिंह को, जो कि मुरैना के ही व्यवसायी हैं। अपना प्रश्न पूछिए।
नमस्ते दीदी, मैं एक बस ऑपरेटर हूँ। मेरे एक लड़का है, वो दारू पीने लगा है, बस वही संभालता है, इसलिए मुझे बहुत टेंशन है।
ये बहुत गहरी बात बताने जा रही हूँ। इस कलयुगी दुनिया का जो सबसे बड़ा हथियार कहे वो शराब है। अगर किसी के दिमाग को खराब करने का सरल तरीका है तो शराब ही है। आप अपने बेटे को जरूर समझाएं कि बेटा, जीवन को अच्छा बनाना है, अच्छा अपना नाम रोशन करना है, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाना है, सोर्स ऑफ इनकम अच्छी करनी है, कुल का नाम वाला करना है, तो जीवन में हम वो सद्गुण लाएं, हम वो आहार लें जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। सभी देख रहे हैं कि शराब पीने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, परिवार बर्बाद हो रहा है, इतने सारे घटना दुर्घटना हो रही है, उसका मूल कारण तो शराब ही है। और ये कलयुग की सबसे बड़ी विधि है। स्वर्णिम युग से कलयुग क्यों आया? पहले खान पान में परिवर्तन हुआ। भगवान को जो हम भोग लगाते हैं उसमें कोई शराब नहीं रखता है। तुमको बताइए, क्या प्रभु प्रिय बनिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, और जो भगवान को पसंद है वो हम खाएं, भगवान को भी माने और भगवान की भी माने, तो आपको भी लाभ होगा, आपके द्वारा अनेकों को भी लाभ होगा। तो भगवान आकर के हम सब बच्चों को क्या समझा रहे हैं कि अपने भोजन को शुद्ध और सात्विक बनाओ, शराब को जीवन से हटाओ, क्योंकि शराब करती है जीवन को खराब। मेरे प्यारे बेटे, मेरे खातिर, अपने देश के खातिर, भगवान के खातिर क्या तुम शराब नहीं छोड़ सकते? अगर सच्चा प्यार है तो प्यार के उपहार में शराब का दान दे दो। ऐसे प्यार से आप बात करेंगे, बेटा छोड़ देगा। ऐसे जीवन जीने की कला प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाई जा रही है। यहाँ हजारों लाखों ऐसे भाई बहन हैं जो वहां शराबी थे, लेकिन आज वो शराब छू भी नहीं सकते।
मुझे लगता है कि इतने प्यार से अगर आप अपने बेटे को समझाएंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। और वैसे भी दीदी ने आपको आग्रह भी किया कि अगर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी केंद्र में ले जाकर के उन्हें यह ज्ञान दिलवाया जाता है तो उनके जीवन से सारी कमी कमजोरियां हट जाएंगी।
मेरा स्वास्थ्य बार बार बिगड़ जाता है, इसकी वजह से घर में बहुत टेंशन होती है। मुझे अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए?
आपको खुशखबरी सुनाते हैं कि विश्व कल्याणकारी, सर्व का भाग्य विधाता, सर्व का परम पिता परमात्मा शिव धरा पर अवतरित होकर हम बच्चों को हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वरदान दे रहे हैं। आज की इस कलयुगी दुनिया में संपूर्ण स्वस्थ तो कोई नहीं है, ये सारी दुनिया ही हॉस्पिटल बनी हुई है, लेकिन ऐसे समय पर भी आप हर प्रकार से एक अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव करना चाहें तो मैं आपको एक सलाह दूंगी। पहले तो एक टैबलेट खाइए आप सुबह दोपहर शाम आईएमओ के, क्योंकि जब अपने मन के अंदर में ये सोच लेते हैं कि मैं बीमार हूं तो बीमारी हमारी बढ़ती रहती है, और जब हमारे मन के अंदर में ये संकल्प रहता है कि मैं स्वस्थ हूं और मैं स्वस्थ हो रही हूं और मैं स्वस्थ हो जाऊंगी, क्योंकि जैसा हमारा मन सोचता है वो सारे तन को वाइब्रेट करता है। हमारे सिर के सेंट्रल पॉइंट पर एक ऐसी नर्वस सिस्टम है जो हमारे सोच को वाइब्रेट करती है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आज से आप कोई वरदान के रूप में यह प्रकाश से अपने जीवन के अंदर स्वीकार कीजिए कि मैं स्वस्थ हूं। मैं बीमार नहीं हूं, मैं स्वस्थ हूं और मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। मन को स्वस्थ बना लीजिए। कहा जाता है मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ। फिर थोड़ी बहुत जो भी आप दवा खाएंगे आप ठीक हो जाएंगे, आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब डॉक्टर भी दवा देते हैं वो भी कहते हैं कि दवा हमारे हाथ में है, दुआ ऊपर वाले की चाहिए। ऊपर वाले की दुआ क्या है? पॉजिटिव सोचिए, शुभ सोचिए, स्वयं के लिए सोचिए, दूसरों के लिए सोचिए। तो दवा भी खाइए और दवा से कई गुना ज्यादा दुआ खाइए। ऐसे दुआएं आप लेती रहेंगी, दुआएं आप देती रहेंगी, आप एक मास का एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। और ऐसी यहां पर जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है, जिस जीवन जीने की कला का नाम है राजयोग। राजयोग माने कोई संन्यास नहीं, कोई वैराग नहीं, कोई घरवार छोड़ना नहीं, कोई कारोबार से विरक्ति नहीं। राज माना राज कारोबार। अपने परिवार को अच्छे से संभालिए, अपने बिजनेस कीजिए, प्लस योग, मेडिटेशन, माइंड का कंसंट्रेशन, जिससे हर प्रकार से आपका कारोबार सुंदर रहेगा और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। इस समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी, ये मेरा आपसे वायदा है।
मार्गदर्शन में प्रश्नोत्तर की कड़ी में समस्याओं के हल तो मिल ही रहे हैं और सोच को भी एक सही दिशा मिल रही है।
जी, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरी स्नैक्स की दुकान है जिसे चलाने के लिए मेरा बेटा सहयोग करता है, लेकिन बिजनेस के करने के दौरान ही वो बालक कभी ग्राहकों से, कभी हमसे किसी भी बात को लेकर के, किसी सौदे को लेकर के हमें टेंशन देता रहता है। ग्राहक से लड़ जाएगा, झगड़ जाएगा, समझाएंगे तो हम पर भी उल्टा पड़ जाएगा। इन समस्याओं के देखते हुए मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए, इसमें इस समस्या से निजात पाऊं।
ये भाई जी आप देख रहे हैं कि इस समय का वातावरण बहुत क्रिटिकल है। बच्चों को जो अच्छा संग मिलना चाहिए, अच्छा वातावरण मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो बच्चे को आप जरूर समझाएं थोड़ा समय निकालकर, क्योंकि आजकल माता पिता भी बच्चों को पूरा समय नहीं दे पा रहे। उनका दोष नहीं है, क्योंकि सारे दिन बिजनेस में या अपने कारोबार में व्यस्त रहते हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार देने की जवाबदारी भी हमारी अपनी है। तो उनको बताइए कि बेटे, अगर तुम्हें अच्छा व्यापार करना है तो अच्छा व्यवहार करना भी सीखो, क्योंकि जिसका अच्छा व्यवहार होता है उसका ही अच्छा व्यापार होता है। और अच्छा व्यवहार करने के लिए मन के अंदर एक दूसरे से मीठा बोलने की भावना, प्रेम से बात करने की भावना, या समय पर दुकान खोलने की, या हर प्रकार से सिस्टमैटिक अपनी जिम्मेवारी को निभाने की, थोड़ा सा जैसे बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज के लिए हम उनको समय देते हैं, ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा आधा घंटा 10 मिनट उनको पर्सनल हम गाइडलाइन भी दें। क्योंकि पूरी जिम्मेवारी माता पिता की है। जब आप प्यार से, स्नेह से बच्चों को समझाएंगे और इस कला को आप सिखाएंगे कि दुकान को बढ़ाना है, ये सब दुकान आजीविका का साधन नहीं है, ये दुकान आपके जीवन का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। दुकान उसी की अच्छी चलती है जिसका नेचर अच्छा होता है, जिसका स्वभाव अच्छा होता है। भविष्य में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मेरी शुभकामना है कि आप इतने सक्षम हो जाओ, इतना अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, जो आप भी अपने परिवार की अच्छी पालना कर सको, तो वर्तमान समय आपका जो फाउंडेशन है अच्छा बने। मैं आपसे यही चाहना करूंगा, क्योंकि बेटा जो होता है वो कुल का दीपक होता है। बेटा माता पिता का नाम रोशन करता है, संसोच फादर। तो ऐसी शुभ भावना से आपको समझाएंगे भी, और साथ ही साथ ऐसी शुभ भावना से आप भी व्यवहार करेंगे। अगर आप भी टेंशन में हो जाएंगे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। आप क्रोध से समझाएंगे तो बच्चा सुधरेगा नहीं, आप भी प्यार से समझाएंगे, अच्छे व्यवहार से समझाएंगे, तो जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, वो आपसे सीखेंगे। तो आपको टेंशन में नहीं आना है, आप अटेंटिव माइंड होकर बच्चे से बात करें और प्रैक्टिकल अपने प्रयोग का एक सबूत देखें, ऐसे मेरी शुभ भावना है।
जीवन में आगे बढ़ने की जिद, सफलता पाने की होड़, जब इस रास्ते पर हम निकलते हैं तो स्वयं से बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं। स्वयं से बहुत ज्यादा दूर हो जाने के कारण और जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाने के कारण हम उलझन में आ जाते हैं, और ऐसे उलझन के समय में हमें आवश्यकता होती है मार्गदर्शन की। कार्यक्रम के शुरुआत में मैंने कहा था, किसी गीतकार ने लिखा था, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। वरिष्ठ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अवधेश दीदी जी के यहां पर उपस्थित होने से जो मुरैना के व्यवसायी गणों ने अपने प्रश्न पूछकर, अपनी उलझन पूछकर के जो लाभ उठाया है, उसको उन सभी हलों को सुनकर के मुझे ऐसा लगता है जिंदगी हंसने गाने के लिए है हर पल। शुक्रिया, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अवधेश दीदी आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, और न केवल मुरैना के ही व्यवसायी गणों का मार्गदर्शन किया बल्कि इस कार्यक्रम के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों का मार्गदर्शन हुआ, क्योंकि इसी तरह की समस्याएं लगभग हर परिवार में हैं, हर व्यक्ति के जीवन में हैं। मैं आप सभी की ओर से, हम सभी की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। समय की आगे बढ़ती सुइयों ने आज तो इस कार्यक्रम को यही विराम दिया है, लेकिन इस कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।